بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آل عمران کی 60ویں سے لے کر 63ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ فمن حاجك فيه من بعد ما
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہے پیغمبر، ستیہ وہی ہے جو آپ کے پالنہار کی اور سے ہے، اتا سندیہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ تو ہے پیغمبر، جو کوئی بھی ایشوریہ سندیش وحی دوارا آپ کے پاس آنے والے گیان کے پشچات آپ سے عیسیٰ مسیح کے بارے میں بحث اور وواد کرے، تو اسے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے پتروں کو لائیں اور تم اپنے پتروں کو، ہم اپنی استریوں کو لائیں اور تم اپنی استریوں کو لاؤ، ہم اپنے آتمیے لوگوں کو اور تم اپنے آتمیے لوگوں کو لاؤ، تو پھر ہم ایشور کے سمکش پرارتھنا کریں اور ایک دوسرے کو ابھیشاپ دیں، تتھا جھوٹ بولنے والوں کے لیے ایشوریہ لعنت ارتھات ابھیشاپ نردھارت کریں۔ निसंदेह ईसा मसीह के जीवन की सच्ची कहानी यही है और ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है और निसंदेह ईश्वर प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। फिर यदि वे लोग सत्य की ओर से मुंह मोड़ लें तो जान लो कि ईश्वर बुरे कर्म करने वालों को भली भांति जानने वाला है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज शुक्रवार शहरी वर्ग 11 सफर की 5 और सितंबर की 2 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवे में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारे पते नोट करें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@wsirib.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट देखना न भूलिए। पता है parstoday.com/hi। श्रोतो, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप सुनेंगे अपना मन पसंद कार्यक्रम पत्र संसार, और सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर। श्रोतो, यह तो थी हमारी आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान ने बल देकर कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए मानवता प्रेमी सहायताओं की भेजने का क्रम जारी रखेगा। अफगानिस्तान की एक मस्जिद में बम का भीषण धमाका हुआ जिसमें 18 लोग मारे गए। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। जो बाइडेन ने कहा है कि ट्रंप अमेरिकी डेमोक्रेसी के लिए खतरा हैं। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। इस्लामी गणतंत्र ईरान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने आपसी रुचि के विषय पर चर्चा की है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने टेलीफोनी वार्ता के दौरान आपसी रुचि के मामलों सहित क्षेत्रीय मुद्दों और ईरान के विरुद्ध प्रतिबंधों को समाप्त करने वाली परमाणु वार्ता की ताजा स्थिति पर विचार विमर्श किया। इस टेलीफोनी वार्ता में ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में हालिया विध्वंसक बाढ़ की वजह से पाकिस्तानी नागरिकों की मौतों और होने वाले नुकसानों पर खेद प्रकट करते हुए पाकिस्तानी जनता और सरकार से गहरी संवेदना प्रकट की और इस बात पर बल दिया कि ईरान पाकिस्तान के लिए अपनी मानवता प्रेमी सहायताओं के भेजने का क्रम जारी रखेगा। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने सीमा बाजार पीशन मंद के उद्घाटन पर ईरान की तत्परता व्यक्त करते हुए कहा कि हम इस बात पर सहमत हैं कि सीमा मंडियों की बहाली संयुक्त सीमाओं में व्यापारिक लेन देन और सुरक्षा की मजबूती में अहम भूमिका अदा कर सकती है। उन्होंने अफगानिस्तान में हालिया परिवर्तनों की ओर संकेत करते हुए इस देश में सारे राजनीतिक और जातीय गुटों की भागीदारी से एक समग्र सरकार के गठन पर बल दिया और आशा व्यक्त की है कि अफगान पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों की अगली बैठक जल्द ही क्षेत्रीय देशों के सहयोग से आयोजित होगी। इस टेलीफोनी वार्ता में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पाकिस्तान में हालिया बाढ़ के पीड़ितों के लिए ईरानी सरकार और जनता की मदद का शुक्रिया अदा किया। ईरान की परमाणु वार्ताकार टीम के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद मरंदी ने कहा है कि जिस तरह से ईरान ने वादा किया था जवाब दे दिया है और अब बाइडेन की टीम को फैसला करने का समय है। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद मरंदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि अगर अमेरिका सही फैसला ले तो शीघ्र ही समझौता हो सकता है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा था कि यूरोपीय संघ को जवाब दे दिया गया है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका की ओर से जवाब मिलने के बाद इस्लामी गणतंत्र ईरान के विशेषज्ञों की टीम ने उसकी गहन समीक्षा करने के बाद आज रात को ईरान का जवाब समन्वयकर्ता को दे दिया। इसी प्रकार नासिर करानी ने कहा कि जो टैक्स व जवाब भेजा गया है उसका उद्देश्य वार्ता को अंतिम रूप देना है। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। तालिबान के अधिकारियों ने बताया है कि हेरात शहर की गुजरगाह मस्जिद में शुक्रवार दोपहर की नमाज के समय भीषण विस्फोट हुआ। एक अफगान चिकित्सक ने बताया है कि पश्चिमी शहर हेरात में एक भीड़ भाड़ वाली मस्जिद में विस्फोट हुआ जिसमें कम से कम 18 लोग मारे गए और 21 घायल हो गए। हेरात एम्बुलेंस केंद्र के एक अधिकारी मोहम्मद दाऊद मोहम्मदी ने कहा है कि एम्बुलेंस ने शुक्रवार को शहर के अस्पतालों में 18 मृतकों और 21 घायलों को अस्पताल पहुंचाया था। इस विस्फोट में मुजीब रहमान अंसारी की भी मौत हो गई जो एक प्रमुख मौलवी थे। पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान की पश्चिम समर्थित सरकारों की आलोचना के लिए अंसारी को पूरे अफगानिस्तान में पहचाना जाता था। अंसारी को तालिबान का करीबी समझा जाता है जिसने विदेशी बलों के वापस जाने के बाद पिछले साल देश की सत्ता को नियंत्रण हासिल कर लिया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी खतरों शीर्षक के अंतर्गत आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बैठक में बोलते हुए भारतीय राजनयिक राजेश परिहार ने कहा कि ये हाई टाइम है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान पर कार्रवाई करे। उनका कहना था कि आतंकी संगठनों के प्रभावी विश्वसनीय सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय सबूतों की तलाश करें। पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से संचालित होने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो बातें कही थी उस पर ट्रंप ने प्रतिक्रिया दिखाई है। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार जो बाइडेन ने फिलाडेल्फिया में जो भाषण दिया था उसकी प्रतिक्रिया में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पागल हैं या बुद्धिहीन हो रहे हैं। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा हमला किया और कहा कि ट्रंप और रिपब्लिकन अमेरिकी डेमोक्रेसी के लिए खुले खतरे हैं। इसी प्रकार जो बाइडेन ने हिंसा से परहेज करने की सिफारिश करते हुए कहा कि हमारे और आपके हाथ हैं जो डेमोक्रेसी पर हमले को रोकेंगे। हमारा मानना है कि अमेरिका इस समय तनाव महत्वपूर्ण मोड़ पर है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन अमेरिका को पीछे ले जाने का इरादा व संकल्प रखते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के खिलाफ ड्रोन नेटवर्क बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि अमेरिकी नौसेना ज़ायनी शासन सऊदी अरब और कुछ अन्य पश्चिमी एशियाई देशों के साथ ड्रोन नेटवर्क बनाने में सहयोग कर रही हैं। फार्स न्यूज के अनुसार अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बुधवार को अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिकी नौसेना ज़ायनी शासन सऊदी अरब और कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में ईरान की सैन्य शक्ति को सीमित करने में सहयोग कर रही है। عراقی سوئم سوی بل اسائب اہل حق نے اگریم سوچنا تک دیش میں اپنے کاریالیوں کو بند کرنے کی گھوشنا کی ہے۔ دیش میں ایک نیا فتنہ ہونے سے روکنے کے لیے عراق میں اسائب اہل حق نے اس آندولن کے کاریالیوں کو اگلی سوچنا تک بند رکھنے کا آدیش دیا ہے۔ اور انت میں یہ سماچار کی آدھنکتم ہتھیاروں سے لیس آتنکوادی امریکی سینک سیریا کے لیے تیل کی سمپت لوٹنے میں ویست ہیں۔ سیریا کی سرکاری سماچار ایجنسی سانا کی رپورٹ کے انوسار 73 سینک ٹرکوں اور آئل ٹینکروں سہت وبھن پرکار کے ہتھیاروں سے لیس آتنکوادی امریکی سینکوں کا ایک قافلہ پچھلی رات سیریا کے المحمودیہ بارڈر سے اوائد روپ سے عراق میں داخل ہوا، جبکہ 25 بختربند گاڑیوں اور آئل ٹینکروں پر آدھارت ایک اور امریکی کارواں عراق کی اور روانہ ہوا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سمات ہوئے۔
شدہ کارکرم راجنیتک چرچا میں آپ کا سواگت ہے، میں ہوں احمد عباس۔
راجنیتک چرچا
کارکرم راجنیتک چرچا میں ہم سیریا کے دمشق شہر میں استھت امام حسین علیہ السلام کی سپتری کے روزے پر ہونے والے کارکرم کی ایک رپورٹ سنوائیں گے۔
سلام خانوس
حضرت رقیہ بنت الحسین کے شہادت دیوس پر دمشق شہر میں
بھارت نے روس میں ہونے والے سینیہ ابھیاس میں بھاگ لے کر امریکہ اور پشچمی دیشوں کو ایک سندیش دیا ہے، یہ وشے بھی راجنیتک چرچا میں شامل رہے گا۔
بھارت نے روس کے ساتھ سنیکت سین ابھیاس میں بھاگ لیا۔
بھارت ندرت کشمیر میں کانگریس کی پردیش اکائی کی ستھی خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ غلام نبی آزاد کے پارٹی چھوڑنے کے بعد بڑی سنکھیا میں پارٹی کے کاریکرتا اور نیتا کانگریس کا ہاتھ چھوڑ رہے ہیں۔
ہمیں مہلائیں بھی چاہیے، سب کا ساتھ چاہیے، وہ ہم نے پہلے ہی بولا ہے۔
اس وشے پر ہم آپ کو ایک رپورٹ سنوائیں گے۔ تو چرچا کے وشے یہی ہیں، آرمبھ کرتے ہیں دمشق میں ہونے والے آدھیاتمک اور شوک کاریکرم سے۔ دمشق میں امام حسین علیہ السلام کی سپتری جناب رقیہ کے روضے میں شردھالوؤں کا مجمع رہا اور شوک سبھا کا آیوجن کیا گیا۔ دمشق سے اسام ہلالی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اختر عباس۔
سلام خانوس
حضرت رقیہ بنت الحسین کے شہادت دیوس پر دمشق شہر میں استھت امام حسین کی بیٹی کے روضے میں شردھالوؤں کا جماوڑا لگ گیا۔
از حضرت رقیہ صبر و شکیبائی رو یاد گرفتیم۔
ایک شردھالو نے اپنے جذبات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے حضرت رقیہ سے سیم اور سہنشیلتا سیکھی ہے، اور یہ سیکھا ہے کہ اسلام کی راہ میں سنگھرشرت رہنا چاہیے تاکہ اسلام کا پرچم کسی ایسے ویکتی کے ہاتھ میں نہ جانے پائے جو اس کے یوگی نہ ہو۔ ایران اور دوسرے انیک دیشوں سے شردھالو حضرت رقیہ کے حرم میں پہنچے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی اس پیاری بیٹی کی عزاداری کریں۔
السلام علیکم یا رقیہ خود، اول میخوام بگم کہ
ایک شردھالو نے بھاوک ہو کر کہا کہ حضرت رقیہ آج اگر ہم یہاں جمع ہیں تو یہ ان شہیدوں کی قربانیوں کا پرتیفل ہے کہ اس حرم میں جن کی سانسیں اور جن کے قدموں کے نشان موجود ہیں اور آج ان کی کمی کا بہت احساس ہو رہا ہے۔ سارے شردھالوؤں کو آج اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ حضرت رقیہ کی شہادت کے بعد حضرت زینب کی کیا استھتی رہی ہوگی۔ وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے کہتی ہوں گی کہ میں شرمندہ ہوں۔ شہید قربان خانے کی ماں جنہوں نے اپنے بیٹے کو پیغمبر اسلام اور ان کے خاندان کی ہستیوں کے روزوں کی حفاظت کے لیے سیریا بھیجا تھا، امام حسین علیہ السلام کی 3 سال کی بچی کی قبر کے پاس کھڑی ہو کر کہتی ہیں،
شاید الان به اینجا رسیدم میگم، شاید قبلا نمیتونستم بگم۔
میں مجید کی ماں اب یہاں پہنچ کر کہہ رہی ہوں کہ شاید یہاں پہنچنے سے پہلے یہ نہ کہہ پاتی کہ ہمیں اپنے بچوں کی اس پرکار پرورش کرنی چاہیے کہ وہ ان عزیز ہستیوں کی راہ میں شہید ہوں اور اس مقام پر پہنچیں۔ یقین رکھیے کہ حضرت رقیہ ہمارے بچوں کی مدد کرتی ہیں۔ آج ایتیحاسک شہر دمشق میں یزید اور یزیدیوں کا کچھ اتا پتا نہیں ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کے روزے پر آج اہل بیت کے شردھالوؤں کا مجمع ہے۔
ان یوفقنا لخدمت
امام حسین علیہ السلام کی راہ میں شہادت پیش کرنے کے عاشق جوان جب تک ہیں شام کے پورے علاقے میں حق کا پرچم لہراتا رہے گا۔ حضرت رقیہ نے اپنی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ اسلام کی حفاظت کے لیے بڑا کٹھن اور لمبا سفر طے کیا۔
روزے الغماس
جی ہاں، حضرت رقیہ شام کی سرزمین کی فاتح اور اس علاقے میں عاشور کا پرچم لہرانے والی بن گئیں۔ دمشق سے IRIB کے لیے اسام ہلالی کی رپورٹ۔
بھارت نے روس میں آیوجت ہونے والے سینیہ ابھیاس میں بھاگ لیا ہے۔ بھارت کا اس سینیہ ابھیاس میں بھاگ لینا خاص سندیش رکھتا ہے۔ جائزہ پیش کر رہے ہیں محمد مہدی۔
بھارت نے روس کے ساتھ سنیکت سینیہ ابھیاس میں بھاگ لیا۔ بھارت کے ودیش منترالے نے بتایا کہ اس دیش نے روس کے ساتھ سنیکت سینیہ ابھیاس میں بھاگ لیا ہے اور ماسکو کے ساتھ سہیوگ بڑھانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کچھ ہی دن پہلے بھارت نے سنیکت راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد میں یوکرین کے مسئلے پر روس کے خلاف ووٹ دیا تھا، جس سے یہ اٹکلیں لگائی جانے لگی تھیں کہ بھارت روس سے دوری بنا رہا ہے، مگر روس کے ساتھ سنیکت سینیہ ابھیاس میں بھاگ لے کر بھارت نے یہ بات استھاپت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ روس اور پشچم کے بیچ بیلنس بنا کر چل رہا ہے۔ اوسٹوک 2022 سینیہ ابھیاس روس کی اور سے آیوجت کیا گیا، جس میں چین اور بھارت کے علاوہ 11 دیشوں کے سینکوں نے بھاگ لیا۔ سینیہ ابھیاس پری مورسکی میں ہوا، جو پوروی روس کے دکشی بھاگ میں جاپان ساگر کے قریب استھت ہے۔ یہ سینیہ ابھیاس گروار سے آرمبھ ہوا ہے اور 7 ستمبر تک جاری رہے گا۔ یوکرین سنکٹ کو دیکھتے ہوئے اس سینیہ ابھیاس کو روس کا شکتی پردرشن مانا جاتا ہے، جس میں یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ روس کو الگ تھلگ کرنے کی پشچمی دیشوں وشیش روپ سے امریکہ کی کوششیں بے اثر رہی ہیں۔ واشنگٹن نے روس کو الگ تھلگ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اس نے بھارت پر دباؤ بنایا کہ روس سے آرتھک لین دین میں کمی کرے، مگر اس کے باوجود ارجا اور سامرک کھیتروں میں روس کے ساتھ بھارت کا سہیوگ بتاتا ہے کہ اس نے واشنگٹن کی مانگ پر دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا۔ سامرک معاملوں کے وشیشجھ چمات زوف اس بارے میں کہتے ہیں کہ شیت یدھ کے زمانے سے بھی روس کے ساتھ بھارت کے رڑنیتک سمبندھ رہے ہیں، جنہیں انیک استر کے اتار چڑھاؤ کے باوجود بھارت نے اب تک باقی رکھا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ بھارت بھی اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ پشچم پر انتراشٹریہ معاملوں میں پوری طرح بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ بھارت ایک سمے پر امریکہ کے بہت قریب جاتے ہوئے دکھائی دیا، لیکن اب لگتا ہے کہ نئی دلی سرکار انتراشٹریہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک طرح کا سنتولن بنانے کی कोशिश में है, क्योंकि अमेरिका अन्य देशों के साथ सहयोग के क्षेत्र में अपने हितों और स्वार्थों को हर कीमत पर पूरा करने की कोशिश में रहता है। रूस के सैन्य अभ्यास में भारत सहित 13 देशों की शिरकत इस बात का सबूत है कि रूस पश्चिम का मुकाबला करने के लिए जरूरी संसाधनों से लैस है। हालांकि वोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास में शामिल देश यूक्रेन में खुलकर रूस का साथ नहीं दे रहे, मगर इस सैन्य अभ्यास से इतना तो जरूर साबित हो जाता है कि रूस को अलग थलग करने की पश्चिम की नीति बहुत से देशों के गले से नहीं उतर रही है, और ये अमेरिका के सामने रूस की बड़ी कामयाबी है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत नियंत्रित कश्मीर में कांग्रेस की प्रदेश इकाई की हालत खराब होती बताई जा रही है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस के शाखा में हाहाकार मची हुई है। जब से गुलाम नबी आज़ाद ने ऑल इंडिया कांग्रेस से त्याग पत्र दिया है, तकरीबन आए दिवस लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। अभी तक सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और नेताओं ने इस पार्टी को अलविदा कर दिया है। भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र देते हुए पत्रकारों से कहा,
हमें तजर्बाकार लोग भी चाहिए, हमें महिलाएं भी चाहिए, सबका साथ चाहिए, वो हमने पहले ही बोला है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि किसी नौजवान के मसले को लेके ऐसा किया गया। जहां तक जो आप इशारा कर रहे हैं बकार सूल साहब का, उसको बनाने में हमारा अहम रोल है, वो तो मसला ही नहीं है।
इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम जारी है, जिसमें 5 अलगाववादी छापामारों के हताहत होने की सूचना है। दक्षिणी कश्मीर में अलगाववादी छापामारों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ में 3 अलगाववादी छापामार हताहत हुए हैं, जिनका ताल्लुक लश्कर ए तैयबा से बताया गया। जबकि उत्तरी कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के बीच एक मुठभेड़ में जैश मोहम्मद से वाबस्ता 2 अलगाववादियों के हताहत होने की सूचना है। सुरक्षा बलों के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने एक विशेष सूचना मिलने के तुरंत बाद इन दोनों क्षेत्रों का घेराव किया और तलाशी अभियान के दौरान एक मुठभेड़ आरंभ हुई, जो काफी समय तक जारी रही। इस मुठभेड़ में अलग अलग घटनाओं में 5 अलगाववादी छापामार हताहत हुए, जिनके नियंत्रण से भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद किया गया। परंतु इन मुठभेड़ों में सुरक्षाकर्मियों का कोई नुकसान हुआ या नहीं, इस बारे में पुलिस प्रवक्ता ने कुछ नहीं बताया। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि आए दिवस सुरक्षा एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि अलगाववाद और आतंकवाद का समाप्त हुआ है, परंतु हिंसक घटनाओं में जो बढ़ोतरी हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि स्थिति अब भी तनावपूर्ण और गंभीर बनी हुई है। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आपका मन पसंद कार्यक्रम पत्र संसार।
पत्र संसार। दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहर दादी
और भैया अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मन पसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
आज के कार्यक्रम में भी दीदी आपके कमेंट्स, आपके ईमेल्स और आपके विचार شامل کریں گے. تو میرے خیال سے شروع کریں گے دیدی ہمیشہ کی طرح آج بھی ای میل سے.
جی, بھلائی چھتیس گڑھ سے آنند موہن بھائی ان کا یہ ای میل ہے. ان کے کلب نے ایک پرتیوگتا کی گھوشنا کی ہے.
جی,
انہوں نے لکھا ہے کہ میری سب سے چھوٹی بیٹی سوتپا بین کی اسامائک مرتیو سے ہم دکھی ہیں. ان کی سمرتی میں اس پرتیوگتا کی گھوشنا کی گئی ہے. یدی سمبھو ہو تو پتر سنسار میں اس کی گھوشنا کرنے کا انوروھ کرتا ہوں. اور آگے انہوں نے پریوار بندھو ایس ڈبلیو ایل کلب ستپا بین میموریز کویز پر پریوار بندھو شارٹ ویو شروتا سنگھ کے سب سے یوا ممبر سورگیہ ستپا بین کی سمرتی میں ایک پرتیوگتا کا آیوجن کیا ہے. اور سبھی سے ان کا انوروھ ہے کہ اس پرتیوگتا میں بھاگ لیں.
آنند موہن بین جی, ہم آپ سے سمویدنا ویکت کرتے ہیں, آپ کو سانتنا دیتے ہیں. آپ کے لیے یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو آپ کی اس کی سراہنا کرنا چاہتے ہیں, اس رجحان کی, اور آپ کی آپ نے جو یہ طریقہ نکالا کہ اپنی بیٹی کو
پچھلی بار بھی اپنی پتنی کے بارے میں بھی انہوں نے ایسے ہی کچھ کیا تھا.
جی
جی,
تو یہ کہ اس سے انہیں یاد بھی کیا جا سکے گا, اور یہ کہ پرتیوگتا سے جو اس میں جو لوگ بھاگ لیں گے ان کے گیان میں وردھی ہوگی. تو یہ ایک اچھی سوچ ہے اور ایک اچھا جذبہ ہے. یہ آپ اس طرح سے شردھانجلی دینا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کو, یہ سراہنیہ ہے. اور ہم آشا کرتے ہیں کہ پرتیوگتا آپ کی سفل رہے, اس میں بھاگ لینے والے روچی کے ساتھ بھاگ لیں اور جانکاریوں میں ان کی بھی اضافہ ہو اور سننے والوں کی بھی.
جی, گرام جسواڑی ضلع کھنڈوا مدھیہ پردیش سے درگیش ناگنپور ہیں. انہوں نے اس بار کچھ نہیں لکھا ہے لیکن ای میل کے مادھیم سے سوویچار بھیجا ہے.
جی,
تو لکھتے ہیں, کرن چاہے سوریہ کی ہو یا پھر آشا کی, جیون کے سبھی اندھکار مٹا دیتی ہے.
بے شک, بالکل صحیح بات ہے. یہ اچھا وچار ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ جب تک روشنی ہے, اور وہ روشنی چاہے سورج کی ہے یا آنکھوں کی روشنی ہے, جتنی بھی روشنی ہو سکتی ہے, امید کی روشنی ہے, وہ ایک نئی ارجا دیتی ہے انسان کو, نیا حوصلہ دیتی ہے آگے بڑھنے اور جیون کو اونچائیوں پر لے جانے کا اتساہ پیدا کرتی ہے. تو اس حساب سے کرن ہو اور اجالا ہو, ان کا مہتو بہت زیادہ ہے. ان کا مہتو اتنا ہی زیادہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو آپ کے پاس دوسری بہت ساری کشمتائیں ہیں موجود, لیکن شاید آپ انہیں استعمال ہی نہ کر پائیں.
جی,
اگر آپ کے ذہن میں آشا نہیں ہے اور آشا کی کرن موجود نہیں ہے, امید نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا شریر بلوان ہو, آپ کے ہاتھوں میں طاقت ہو, آپ کے پیروں میں طاقت ہو, آپ اس سے بہت کچھ انجام دے سکتے ہوں, بہت بڑی بڑی سفلتائیں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حاصل کر سکتے ہوں, لیکن اگر آپ نے آشا گنوا دی تو آپ کی یہ ساری طاقتیں اپنی جگہ رہ جائیں گی اور آپ استعمال نہیں کر پائیں گے. تو اس حساب سے یہ بات بالکل 100% صحیح ہے. اور اب باری ہے سنسکرتی سے جڑی خبر کی. تو یہ بھی دیکھنا روچیکر رہتا ہے کہ دیدی کون سی خبر چن کے لے آتی ہیں.
جی, ویسے تو سنسکرتی خبر ہے, اس لیے آج بھی ہم فارس پرانت کے شیرا شہر کے کوہ گلوے اور بویر احمد کے دکشن پشچمی پرانت کے ایک شہر گچھ سران سے جڑنے والی سڑک کے ساتھ تنگ شیو ندی پر بنا ایک پراچین پل ہے جو ایتیہاسک ادھینوں کے انوسار اسلام سے پورو کال میں ساسانی شاسن کال یا زرتشتی کال سے سمبندھت ہے.
جی,
اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو بنیم برج بشت شہر میں استھت ہے. یہ شہر وشیش روپ سے نوروز چھٹیوں کے دوران پرانت کے سب سے مہتوپورن ایتیہاسک پریٹن ستھلوں میں سے ایک ہے. بنیم برج پرسپر جڑے محرابوں سے بنایا گیا ہے جو ایران کے پروجوں کی جیون شیلی اور واستو شلپیہ شیلی کو درشاتی ہے. پراچین سمے میں یہ پل شیتر کے لوگوں کے بیچ مارگ اور سانسکرتک آدان پردان کے مادھیم کے روپ میں کاریہ کرتا تھا. स्थानीय पर्यटन विभाग के प्रमुख सादिक मंदानी जादे ने पुल को प्राचीन काल में ईरानी सभ्यता के अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया है।
ये अच्छी खबर आपने सुनाई दीदी। पुल की जहाँ तक बात है, पुलों के निर्माण से हम ये देखते हैं कि ईरान के बहुत से इलाकों में बड़ी सुविधाएं पैदा हुई हैं और बड़ी महत्वपूर्ण जगहों पर इन पुलों का निर्माण किया गया है और इतनी निपुणता के साथ और इतनी मजबूती से ये निर्माण किया गया है कि ये पुल आज तक बाकी हैं, उनकी उपयोगिता बनी हुई है। तो इस हिसाब से वो लोग महत्वपूर्ण रहे और उनकी यादगार भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने ये काम किया और आज तक मौजूद है। और अब कार्यक्रम का एक दिलचस्प हिस्सा है
जी,
श्रोताओं के और पाठकों के कमेंट्स का
जी। ईरानी विशेषज्ञ मामले की गहन समीक्षा कर रहे हैं, अमेरिका को बाद में दिया जाएगा जवाब। इस पर मनोचर लिखते हैं, यूएस की सरकार पर आतंकवादी इसराइल का नियंत्रण है और उनसे आदेश ले रहा है। ईरान के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये बेकार है और इसराइल सभी मुसलमानों का नंबर एक दुश्मन, इसलिए वो अमरीकियों को ईरान के साथ समझौता नहीं करने देंगे।
ये बात सही है कि इसराइल बहुत कोशिश कर रहा है कि ये समझौता ना होने पाए। इसराइल ने इसको बुरा समझौता कहा है। इसराइल ने बार बार अमेरिका को ये समझाने की कोशिश की कि समझौता करना अमेरिका के हित में नहीं होगा, इससे ईरान को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंच जाएगा, ईरान इससे मजबूत होगा, ईरान के घटक संगठन और दल मजबूत होंगे पूरे इलाके में, जो कि अमेरिका और इसराइल के लिए अच्छी बात नहीं है। ये सब कुछ अपनी जगह पे सही है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि यूरोप की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है अमेरिका पर कि वो ईरान के साथ ये समझौता कर ले। खुद अमेरिका की वर्तमान सरकार ये चाहती है और शुरू से कहती आई है कि ये समझौता ज़रूर हो जाना चाहिए। क्यों करना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि उनको ईरान से कोई हमदर्दी हो गई अमेरिका को और यूरोप को, बल्कि वैश्विक हालात इस तरह के बन गए हैं कि ईरान की बेहद सख्त ज़रूरत पड़ गई है इन देशों को। ईरान की नहीं बल्कि ईरान के तेल की, ईरान की ऊर्जा की ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए कि दुनिया के बाज़ारों में ऊर्जा का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्थाएं बड़े कठिन दौर से गुजर रही हैं और यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं का भी यही हाल है। अमेरिका की अपनी समस्याएं हैं और बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन यूरोप बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है और यूरोप में समाज के सारे ही क्षेत्र, सारे ही वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि हमें एक रिलीफ चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि ईरान का तेल, ईरान की गैस विश्व मंडियों में आए, ताकि यूरोपीय देशों से प्रेशर कम हो, जो कि वर्तमान हालात की वजह से, यूक्रेन जंग की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए इसराइल की कोशिशों का कामयाब होना इसकी उम्मीद कम नज़र आती है। तो श्रोताओं, अब बारी है श्रोताओं के विचार सुनने की। जो आप जानते हैं कि किसी न किसी श्रोता के विचार कार्यक्रम के इस हिस्से में सुने जाते हैं। दीदी चयन करती हैं कि किस हफ्ते किस श्रोता के विचार सुने और सुनवाए जाएंगे।
इस बार लखनऊ से आबिद रजा ने हमसे संपर्क साधा है और अब हम इनके विचार सुनते हैं।
जी,
मेरा नाम सैयद आबिद रजा है, मैं लखनऊ इंडिया से हूँ और तेहरान रेडियो के जो हिंदी प्रोग्राम होते हैं उसमें काफी अच्छे प्रोग्राम होते हैं, अनपार्शल रहते हैं, अनबायस्ड रहते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया की जो खबरें होती हैं इसके अगेंस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट और मुस्लिम्स के अगेंस्ट, और एक बायस व्यू रखते हैं वो हमेशा, जो कि अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, जबकि वो सच छुपाते हैं, उसके एकदम बरखिलाफ तेहरान रेडियो के जब प्रोग्राम होते हैं वो काफी साफ चीज रखने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। और मुस्लिम कम्युनिटी में जो सबसे ज्यादा तफरका फैलाने की कोशिश होती है उसको रोकने की काफी हद तक कोशिश रहती है तेहरान रेडियो की। साथ में हाईलाइट रहता है कि कौन जालिम है और कौन मजलूम है, उनके मजहब और उनकी कास्ट और रेस से हटा के दिखाने की कोशिश होती है। तो ये प्रोग्राम काफी अच्छे हैं, काफी लोगों को पसंद आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया भर में ज़ायनिस्ट कैप्चर किए हुए हैं मीडिया को, उसके खिलाफ एक मतलब हिंदी में अगर यहाँ कह दें तो शायद ही एक ही दो आवाज उनमें से कि तेहरान रेडियो है बैलेंस रिव्यू बैलेंस करने की कोशिश करता है लोगों को, मतलब एक अल्टरनेट सोर्स से भी खबर मिलती है जिस तरीके से दुनिया में सिर्फ एक ही सोर्स है फिलहाल। तो काफी अच्छे लगते हैं प्रोग्राम, आर्टिकल काफी अच्छे होते हैं तेहरान रेडियो की जो हिंदी वेबसाइट है उनसे जो आर्टिकल्स आते हैं तो काफी लोग पसंद कर रहे हैं। खाली मुस्लिम ही नहीं, नॉन मुस्लिम भी काफी फॉलो करता है और पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और इस तरीके के प्रोग्राम और थोड़ा अगर इंडिया में इसकी पब्लिसिटी और की जाए, एडवर्टीजमेंट और किया जाए तो इसका और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि शायद मुझे लगता है थोड़ा पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट में कमी है अभी ईरानी मीडिया की जो इंडिया में, तो उस तरफ थोड़ा सा कोशिश बढ़ाई जानी चाहिए, बस यही कहना होंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
जी तो ये थे आबिद रजा साहब के विचार, आपने उनके विचार सुने। दीदी कार्यक्रम
समय नहीं रहा हमारे पास भैया, तो मैं
समय नहीं बचा, तो आप ऐसा कर सकते हैं सिर्फ आप एड्रेस
जी पते बता दो,
अपना ईमेल एड्रेस और जी, बाकी जी, आप कांटेक्ट नंबर वगैरह बता
सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi और व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-90-350-65492।
तो श्रोताओ आपने कार्यक्रम पत्र संसार सुना, इसी के साथ यहीं पर यह कार्यक्रम समाप्त होता है। अगली मुलाकात तक भैया अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए,
खुदा हाफिज़।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं अब प्रस्तुत है हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम विज्ञान की डगर।
विज्ञान की डगर।
दोस्तों कार्यक्रम विज्ञान की डगर की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम ईरान और दुनिया के ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में होने वाली प्रगति के विषय पर चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
पहली बार अमेरिका स्थित न्यू जर्सी में रोजर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के साथ एक ईरानी शोधकर्ता ने एक स्मार्ट रिस्ट बैंड विकसित किया है जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य लक्षणों को सटीक रूप से माप सकता है। इस रिस्ट बैंड का प्रोटोटाइप वायरलेस तरीके से स्मार्टफोन से जुड़ता है और मानव शरीर के जैविक संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला को मापता है। मानव रक्त में विभिन्न रक्त कोशिकाओं की संख्या की गणना करना इन संकेतकों में से एक है। नाड़ी, हृदय गति आदि को मापने की क्षमता वाले स्मार्ट रिस्ट बैंड का उत्पादन कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये पहली बार है जब कोई रिस्ट बैंड इंसानों में सबसे छोटे जैविक और महत्वपूर्ण संकेतों को मापने में सक्षम हुआ है। इस उद्देश्य के लिए ये रिस्ट बैंड एक माइक्रो फ्लूइडिक सेंसर, एक माइक्रो कैलकुलेटर और एक ब्लूटूथ मॉड्यूल का उपयोग करता है। ये सब सारी चीजें एक छोटे रिस्ट बैंड पर लगी होती हैं।
ईरानी शोधकर्ता के अनुसार इस शोध परियोजना के वरिष्ठ सहयोगियों में से एक और रोजर्स विश्वविद्यालय के संकाय के सदस्य इस रिस्ट बैंड में शरीर में बैक्टीरिया की संख्या रक्त में रक्त कोशिकाओं की संख्याओं का पता लगाने तथा आसपास की हवा में कार्बनिक या अकार्बनिक कणों की संख्या का अनुमान लगाने की क्षमता रखती है। भविष्य में ये रिस्पैन सर्जिकल सुई के सिर में रक्त की मात्रा की जांच करके सभी आवश्यक छोटी जानकारी एकत्र करने और प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। यह आविष्कार ल्यूकेमिया जैसे कुछ कैंसर के खिलाफ लड़ाई में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, क्योंकि रक्त कोशिकाओं की संख्या में अचानक वृद्धि या कमी इस कैंसर का संकेत हो सकता है। उत्पादित रिस्ट बैंड का उपयोग हवा में खतरनाक कणों और अन्य पर्यावरणीय खतरों की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है।
रक्त कैंसर, जिसे ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का कैंसर है जो रक्त और अस्थि मज्जा से संबंधित है। लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBCs, सफेद रक्त कोशिकाओं WBCs और प्लेटलेट्स सहित रक्त कोशिकाओं की कई श्रेणियां हैं। ल्यूकेमिया WBC के कैंसर से संबंधित है और शायद ही कभी लाल रक्त कोशिकाओं और समय पूर्व प्लेटलेट्स से जुड़े होते हैं। ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ल्यूकेमिया दो प्रकार के होते हैं, तीव्र और पुरानी ल्यूकेमिया। तीव्र ल्यूकेमिया में स्थिति विकसित होती है और तेजी से बिगड़ती है, जबकि पुरानी ल्यूकेमिया में समय के साथ स्थिति बिगड़ती जाती है। ल्यूकेमिया के लिए अलग अलग उपचार के विकल्प हैं, लेकिन रोगी किस प्रकार के ल्यूकेमिया में ग्रस्त है, इस आधार पर उपचार का तरीका तय किया जाता है।
खून का कैंसर यानी ल्यूकेमिया खून और बोन मैरो अर्थात हड्डी के अंदर जहां खून बनता है में होने वाला कैंसर है। ये बच्चों और किशोरों में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है। अमेरिका में हर साल लगभग 3,500 से 4,000 बच्चों को खून का कैंसर ल्यूकेमिया हो जाता है और भारत में हर साल लगभग 12,000 बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है।
खून का कैंसर यानी ल्यूकेमिया बोन मैरो यानी हड्डी के अंदर जहां खून बनता है के ठीक से काम न करने पर होता है। बोन मैरो हड्डी के अंदर जहां खून बनता है, हड्डी के अंदर का मुलायम भाग है। ये एक खून की कोशिका फैक्ट्री की तरह काम करता है। खून की सारी कोशिकाएं यहीं बनती हैं। ये खून बनाने वाली कोशिकाओं के रूप में शुरू होती हैं। हेमाटोपोएटिक कोशिकाएं अगर बोन मैरो ठीक से काम करता है तो ये खून बनाने वाली कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं बन जाती हैं जो अंत में लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स में बदल जाती हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि रक्त कैंसर कैसे होता है। जब सफेद रक्त कोशिकाओं के DNA को क्षति पहुंचती है तो ल्यूकेमिया विकसित होता है। कैंसर की कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बढ़ती हैं जो कि बालावस्था के बाद रक्त उत्पादन का सामान्य स्थल है। ये कैंसर कोशिकाओं के साथ मज्जा के प्रतिस्थापन के कारण स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के खराब उत्पादन का परिणाम है। ये नई कोशिकाएं न केवल अस्वस्थ होती हैं बल्कि असामान्य भी होती हैं और वे सामान्य कोशिकाओं की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं और उनमें असीमित प्रसार क्षमता होती है। ये कोशिकाएं अस्थि मज्जा में रहकर स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को सामान्य रूप से बढ़ने और कार्य करने से रोकती हैं। इससे रक्त में स्वस्थ कोशिकाओं से अधिक कैंसर की कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ल्यूकेमिया के सटीक कारण अभी तक नहीं जाने गए हैं। कई कारकों की पहचान की गई है जो ल्यूकेमिया के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।
दोस्तों, ताइवान के ताइचुंग में आयोजित FIRA 2018 वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप ने तीसरे दिन ईरानी टीमों ने कई पदक जीते और मुकाबले में अपना लोहा मनवाया। छात्र वर्ग में अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की रोबोटिक्स टीमों ने मिशन सेक्शन में फ्लाइंग रोबोट लीग की प्रतियोगिताओं में चीन और ताइवान की टीमों के बाद इस विश्वविद्यालय की ऑटोमोव टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। छात्र वर्ग में और अंडर 19 आयु वर्ग में कुलहक हाई स्कूल की दानिश एक्स प्राइम रोबोटिक्स टीम ने अर्बन क्राइसिस मैनेजमेंट लीग में चैंपियनशिप जीती। उसी लीग में उसी हाई स्कूल से दानिश एक्सप्रेस की टीम दूसरा स्थान हासिल करने में सफल रही।
अंडर 19 आयु वर्ग में रोबोट स्पोर्ट्स लीग में इस लीग में दानिश कुलहक हाई स्कूल की दानिश प्लस टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। इसी लीग में सलाम दिबाजी हाई स्कूल की सलाम दिबाजी टीम ने इस लीग में तीसरा स्थान हासिल किया। इसी लीग और अंडर 14 आयु वर्ग में सलाम सदर स्कूल की सलाम सदर टीम ने चैंपियनशिप जीती। मिशन इम्पॉसिबल लीग और अंडर 19 आयु वर्ग में अमीर कबीर रोबोटिक स्कूल की टर्मिनेटर टीम ने इस प्रतियोगिता में पांचवा स्थान हासिल किया। 23वीं FIRA वर्ल्ड रोबोटिक्स प्रतियोगिता ताइवान के ताइचुंग में 15 से 21 अगस्त 1997 तक आयोजित की गई थी, जिसमें 20 देशों की 250 छात्र टीमों ने भाग लिया था।
दोस्तों, तेहरान विश्वविद्यालय के बायोफिजिकल बायोकेमिस्ट्री सेंटर के शोधकर्ताओं ने ट्विन 20 और नाइट्रिक एसिड का उपयोग करके पोरस गोल्ड नैनो पार्टिकल्स या सोने के नैनो कणों का उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की है। इस अध्ययन के निष्कर्षों ने अमेरिकन इन्वेंटर्स एसोसिएशन में पोरस गोल्ड नैनो पार्टिकल्स यानी छिद्रपूर्ण सोने के नैनो कणों के उत्पादन की एक नई विधि के पंजीकरण का नेतृत्व किया।
धातु नैनोकणों के कम घनत्व और उसकी प्रभावी संपर्क सतह के कारण धातु नैनोकणों उत्प्रेरक या सुविधाकर्ता दवा हस्तांतरण चुंबकीय स्मृति मेडिकल इमेजिंग और बायोमोलिकुलर डिटेक्शन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संभावित रूप से इसका प्रयोग किया जाता है और इसी चीज ने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। इन कणों में पोरस गोल्ड नैनो पार्टिकल्स विद्युत रासायनिक सुपर कैपेसिटर के साथ साथ अपने अद्वितीय संरचनात्मक रासायनिक और यांत्रिक गुणों के कारण अत्यधिक प्रभावी हैं। पोरस गोल्ड नैनो पार्टिकल्स में सोने के नैनो कणों और नैनो पोर्स वाली सोने की फिल्मों की तुलना में सतह से आयतन का अनुपात अधिक होता है, इसलिए दो नैनो संरचित सतहों अर्थात कण आकार और सतह सर्धता होने के कारण उनके व्यापक प्रयोग की उम्मीद है। इस शोध के शोधकर्ता के अनुसार इस विधि से पोरस गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के संश्लेषण के कई फायदे हैं, जिनमें सरलता और सस्तापन इन विशिष्ट विशेषताओं में से एक हैं।
यूनाइटेड किंगडम में एक्सेटर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अद्वितीय यौगिकों की पहचान की है जो मानव शरीर में पुरानी कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया को लक्षित करके फिर से जीवंत कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी जीवी संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतुओं और पौधों की सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं जो नीली हरी शैवालों तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं।
जिस तरह बिजली के लिए पावर हाउस की जरूरत होती है, वैसे ही कोशिकाओं को जीवित रखने और काम करने की ऊर्जा पावर हाउस से ही मिलती है। प्राणी की हर कोशिका लाल रक्त कणों के अलावा मिलने वाले इस पावर हाउस को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में रिचर्ड ऑल्टमैन ने की और इसका नाम बायोप्लॉट्स रखा। इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम कार्ल बेंडा ने 1898 में दिया है।
इन कोशिकाओं को फिर से जीवंत करके यह आशा की जा सकती है कि वृद्ध लोग अपनी महत्वपूर्ण कोशिकाओं को फिर से जीवंत कर सकते हैं और अपनी जवानी को नया रूप दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं में से एक जो लोगों को उम्र बढ़ने का कारण बनती है उसे सेलुलर उम्र बढ़ना कहा जाता है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है मानव कोशिकाएं कमज़ोर से कमज़ोर होती जाती हैं, जिसका अर्थ है कि वे अब आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि पुरानी कोशिकाएं यथावत सक्रिय रहेंगी, लेकिन बूढ़ी कोशिकाएं युवा कोशिकाओं का कार्य अंजाम नहीं दे सकती, जिसके कारण मनुष्य उम्र के साथ अपनी कई क्षमताओं को खो देता है।
दुनिया भर के कई शोधकर्ता पुरानी कोशिकाओं को फिर से जीवंत करने के लिए तंत्र तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और एक्सेटर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि हाइड्रोजन सल्फाइड की एक छोटी मात्रा को सीधे प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रियल हिस्से में इंजेक्ट किया जाता है तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया शरीर की कोशिकाओं को उलट सकती है। इस आधार पर अब तक जो यौगिक विकसित हुए हैं वे 40-50% पुरानी कोशिकाओं का कायाकल्प करने में सफल रहे हैं और हम आशा कर सकते हैं कि ये संख्या भविष्य में और बढ़ेगी।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अब समय है मुख्य समाचारों के सारांश का। ईरान ने बल देकर कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए मानवता प्रेमी सहायताओं को भेजने का क्रम जारी रखेगा। अफगानिस्तान की एक मस्जिद में बम का भीषण धमाका हुआ जिसमें 18 लोग मारे गए हैं। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ट्रंप अमेरिकी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। श्रोताओ, हमारा कार्यक्रम आपने शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुना। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज, शुभ रात्रि। Thank you.